अगला बाब देखेंगे। अल अशिया उल्लती तुफसिदु सौम, रोजे को फासिद करने या तोड़ने वाले उमूर। पहला मसला है रोजे के दौरान जिमा करने से रोजा बातिल हो जाता है, इस पर कफारा भी है और कजा भी है। दूसरा मसला, रोजे का कफारा एक गुलाम आजाद करना है या 2 माह के मुसलसल रोजे रखना या 60 मोहताजों का खाना खिलाना, और इन दोनों के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत रिवायत है। इससे आपको इस्लाम का हुसन भी दिखेगा और कैसे मामलों को टैकल किया जाता है इसको भी आप देखेंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, एक सहाबी आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, मैं हलाक हो गया। आपने पूछा, क्या बात है? इसने कहा, मैं रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत कर बैठा हूँ। इनके इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा कि मैं हलाक हो गया हूँ। सहाबे कराम गुनाह को अपने लिए हलाकत समझते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या तू एक गुलाम आज़ाद कर सकता है? इसने कहा, नहीं। नबी अकरम ने फिर दरियाफ्त किया, क्या 2 माह के मुसलसल रोज़े रख सकते हो? इसने अर्ज़ किया कि नहीं। आपने पूछा, क्या 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकते हो? इसने कहा कि नहीं, क्योंकि गरीब थे। आपने कहा, अच्छा बैठ जाओ। ज़रा अल्लाह के नबी का अखलाक तो देखिए, कोई ताना दिए, कोई तंज, कोई मजाक, कोई बात, कोई छिछोरी बात, कुछ नहीं की, खामोश का बैठ जाओ। नबी अकरम थोड़ी देर रुके, हम अभी इसी हालत में बैठे थे कि आपकी खिदमत में एक खजूरों का अर्क टोकरा लाया गया। अर्क बड़े टोकरे को कहा जाता है। नबी अकरम ने फरमाया, मसला पूछने वाला कहाँ है? इसने अर्ज किया, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, ये खजूरें ले जा और सदका कर दे। इससे पता चलता है कि इंसान अपने पास ना भी रकम रखे किसी कफारे की, तो कोई दूसरा उसको दे तो उससे भी वो उसका कफारा दे सकता है। इसने अर्ज किया कि मैं हाजिर हूँ। आपने कहा, ये खजूरें ले जा और सदका कर। और इसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या सदका अपने से ज्यादा मोहताज लोगों को दूँ? वल्लाह, मदीना की सारी आबादी में मेरे घर से ज्यादा कोई मोहताज घर नहीं। रसूलुल्लाह हंस दिए, यहाँ तक कि आपकी दाढ़े मुबारक नजर आने लगी। आपने फरमाया, अच्छा जाओ, अपने घर वालों को ही खिला दो। सही बुखारी और मुस्लिम की बात है। इतना प्यारा दीन किसी का, गुनाहगार को ना कोई शर्मिंदगी देनी, ना कोई ताना देना, बल्कि उसको खाना भी मिल गया। और लोग भी अल्लाह के नबी से कैसे अच्छे अखलाक की बात करते थे। कोई और होता तो डर दुबक के चला जाता कि कहीं डांट ना पड़ जाए। कोई कहेगा, एक तो गलत काम किया और एक ऊपर तुम अब ये बातें कर रहे हो। तो ये देखिए कि ये है वो एक अच्छे लीडर की खूबियाँ, कि उसका रोब भी कैसा होता था और अल्लाह के नबी के साथ लोग कम्फर्टेबल भी अपने आप को कितना फील करते थे। हालांकि अल्लाह के नबी ना डांटते थे, ना डपटते थे, लेकिन उनकी बात का एक असर ऐसा होता था कि लोग खुद बखुद आपसे मोहब्बत करते थे। तो इससे फिर बात समझ में आ गई कि हालात के मुताबिक फिर जैसे मुख्तलिफ चीज़ें होंगी वो एडजस्ट की जाएंगी। एक और दलील है, सैयद बिन मुसैब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया और कहा, मैंने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया। नबी अकरम ने उसे फरमाया, सदका कर, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग और रोज़े की कज़ा अदा कर। इसे इब्ने अबी शैबा ने मुसन्निफ़ में रिवायत किया। अब आप देखिए कि ये सारी चीज़ें जो हैं रोज़ा टूटने की हैं, किसी वजह से भी रोज़ा अगर टूटा है तो फिर यही है उसका दलील। जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया ना कि फ़र्ज रोज़ा रख के अगर तोड़ते हैं तो फिर उसका भी यही गुनाह है। क्या यही कफ़ार है? एक गुलाम आज़ाद करना, आजकल वो नहीं, फिर 2 माह के रोज़े रखना, वो नहीं तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना। जो भी चीज़ तीनों में से हो सके उसको कर लिया जाए, तो बहरहाल कफ़ारा तो अदा करना ही होगा। कस्तन यानी इरादे से कह करने से रोज़ा टूट जाता है और इस पर कज़ा वाजिब है, खुद बहुत कह आने से रोज़ा नहीं टूटता। दलील, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जिस रोज़ेदार को खुद बहुत कह आ जाए इस पर कज़ा नहीं, अलबत्ता जो रोज़ेदार कस्तन कह लाए वो कज़ा रोज़े रखे। इसे अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया। कस्तन रोज़ा टूट जाता है, कज़ा वाजिब है। इससे आपके उस सवाल का जवाब मिल गया होगा जो हमारे यहाँ अमूमन वॉमिटिंग के बारे में होता है, तो वॉमिट की सूरत में खुद ब खुद आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, खुद आपने की तो टूटेगा। देखिए, एक रूह समझ लेना हुक्म की, कि जिस काम में आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है ना, उससे फिर वो रोज़ा टूट जाता है। अब ये खुद ही के आ गई तो उसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, तो फिर उसमें रोज़ा इंशाल्लाह नहीं टूटता। हैज़ या निफास शुरू होने से औरत का रोज़ा टूट जाता है, रोज़े की कज़ा है, नमाज की नहीं। दलील, अबू सईद खुदरी कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है? कि औरत जब हाइजा होती है तो ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है, और औरतों के दीन में कमी की यही वजह है। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है। दूसरी दलील, हज़रत अबू जन्नाद रहमहुल्लाह कहते हैं कि मसनून और शरई अहकाम बसा औकात राय के बिल्कुल बरक्स होते हैं, लेकिन मुसलमानों पर इन अहकाम की पैरवी करना लाजिम है। इन्हीं अहकाम में से एक ये भी है कि हाइजा औरत रोज़ों की कज़ा तो दे लेकिन नमाज की कज़ा ना दे। तो इससे हमने देखा कि पीरियड्स के या नफास के होने से रोज़ा टूट जाता है। हम यहाँ फिर देखेंगे कि हमारे यहाँ इस बारे में भी जो गलत फहमियाँ पेश की जाती हैं, और वो क्या हैं कि 12 बजे के बाद अगर पीरियड्स आते हैं तो रोज़ा कायम रखेंगे और पूरा करेंगे, और बाज़ दफ़ा पीरियड्स ख़त्म हो चुके होते हैं और कई कई दिन तक लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, पूछें तो क्या, और उसके कई अजीबोगरीब से उज़र होते हैं कि अभी मैं पाक नहीं हुई, अभी मैंने अपने आप को साफ़ नहीं किया। तो इस पे बात खोल के सुनने की बात है, क्योंकि ये फ़राइज़ में से है। जिस तरह फ़र्ज नमाज का वक्त आ जाए और अगर हम नमाज नहीं पढ़ते तो उसकी कज़ा उस वाजिब है और गुनाह होगा, इसी तरह जब पीरियड्स आ गए, आप मगरिब की नमाज पे वज़ू के लिए गए और आपने देखा कि आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई, आपका रोज़ा टूट गया, सवाब मिलेगा, अल्लाह अजर ज़ाया नहीं करता, लेकिन उस रोज़े की आप कज़ा बाद में रखेंगे। और अगर आपका दिल अल्लाह के फ़ैसलों पे राज़ी है ना, फ़ौरन बाहर आएँ, 5 मिनट थे, आप फ़ौरन 5 मिनट पहले खजूर खा लें, इतना भी वेट ना करें कि मैं बाद में खोलूँगी। बस दफ़ा हम कुछ मसाइल को इस तरह से लेते हैं कि जितना मुश्किल में पड़ेंगे ना उतना ही हमें अजर मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मानने में अजर है। एक मौके पे आपने सहाबे कराम को कहा कि सब निकल जाएं, किसी मुहिम पे जा रहे थे, ठीक है, उसके बाद आपने नमाज शुरू कर दी। नमाज पढ़ने के बाद जब सलाम फेरा तो पीछे एक सहाबी को देखा जो आपके साथ नमाज पढ़ रहे थे, आपने कहा कि तुम नहीं साथ गए? कहेंगे अल्लाह के नबी मेरी सवारी बड़ी तेज़ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ने के अजर से क्यों महरूम रहूं, मैं बाद में भी निकलूंगा उनके साथ मिल जाऊंगा। आपने कहा कि तुम उनसे तो मिलोगे लेकिन उस अजर को तुम नहीं पा सकते जो उन्होंने पा लिया। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, बात मानना असल बात है। बंदा मोमिन तो हर लम्हे बेचैन होता है कि कहाँ मेरे रब का कोई हुक्म आए और मैं उसको मानने को तैयार हो जाऊँ। तो जिस तरह मगरिब से कुछ अरसा पहले भी अगर रोज़ा खुल गया तो आप खोल लेंगे, इसी तरह दूसरी तरफ भी देखिए। और ये मसला ख़ास तौर पर बच्चियों को नहीं मालूम होते, जिसकी वजह से कई कई रोज़े अपने ज़ाया किए जाते हैं। आप पीरियड्स से थे, अब आपके रोज़े ख़त्म होने का वक्त है, पीरियड्स के ख़त्म होने का। अब आपको लग रहा है कि रात तक आप पाक नहीं हुए थे लेकिन उम्मीद है कि आप सुबह तक पाक होंगे। आप सुबह अपने आप को चेक करें। सहाबियाँ जो थीं वो रुई के साथ देखा करती थीं कि वो पाक हुई हैं कि नहीं, और इसकी एक अलामत होती है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, जो बिल्कुल यानी एक साफ सुथरापन, एक ट्रांसपेरेंट चीज़ आती है, तो उससे पता चल जाता है कि क्लीन हो गया। अब फजर का वक्त है, आप उठे, चेक कीजिए अपने आप को, अगर ट्रांसपेरेंट है, अब आपने गुसल नहीं किया हुआ, लेकिन वही हुक्म इधर भी तलाक होगा जो जुनाबत का, आप वजू करके सहरी खाइए और उसके बाद आप पीरियड्स का गुसल करके नमाज पढ़ेंगे, ये चीज़ मौजूद है। यानी अगर सुबह फजर की नमाज तक आप पाक हो चुके थे लेकिन आपने गुसल का वक्त नहीं मिला आपको, तो उसके बावजूद भी आप फिर भी इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे। हाँ, फजर के बाद आपने सुबह थोड़ा सा देखा कुछ, यानी अभी पाक नहीं थे तो फिर रोज़ा नहीं होगा। यदि एक लम्हा पहले पाक हो जाए या एक लम्हा पहले पीरियड शुरू हो जाए, दोनों सूरत में आपका रोज़ा फिर आपका खुल भी जाता है और रोज़ा रखना फ़र्ज भी होता है। बिला वजह इसको देर नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग रोज़ों को टालने के लिए फिर कई कई दिन शावर नहीं लेते, ये भी एक अजीब व गरीब हालत है कि पीरियड्स ख़त्म भी हो जाते हैं और वहाँ फिर क्या बात कही जाती है, नहीं अभी मेरे 6 दिन पूरे नहीं हुए। किसी हदीस में कोई 6 दिन का जिक्र नहीं है। हमारे कल्चर में हो सकता है हो, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे खत्ते हैं जहाँ की खाना पीना उठान ऐसी है कि वहाँ 2 दिन होंगे, कहीं 8 दिन भी होंगे, कहीं 10 भी हैं, तो उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो ही पीरियड शुरू हुए, ब्लीडिंग आई, रोज़ा टूट गया या आपकी कैफियत शुरू हो गई, जो ही ख़त्म हुई आप पे नमाज फ़र्ज है। अगर कोई किसी वजह से गुसल डिले करता है तो जो बीच की नमाजें वो कज़ा करेगा। यहाँ एक चूँकि ये मसले अहम है इसलिए मैं जिक्र ज़रा तफसील से कर रही हूँ कि मसलन आप देखिए कि आप के पीरियड ख़त्म हुए, अब इसका ताल्लुक रमज़ान से भी है और गैर रमज़ान से भी है, क्या क्या आप पीरियड से पाक हो गए, अब आप गुसल करना चाह रहे, फ़ौरन कीजिए, जो ही आप पाक हुए उसके बाद अगली नमाज आप पे फ़र्ज़ है। अगर किसी वजह से आपने डिले किया, मसलन अगर कोई 11-12 बजे के करीब पाक हो गया किसी वजह से बाहर था, घर से बाहर, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, अब वो नमाज तक नहीं गुसल कर सकी। घर जाएंगे, जब गुसल किया तो अब सिर्फ असर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, जोहर भी पढ़ेंगे। इसी तरह बाज़ औक़ात किसी इंसान ने कोई नमाज छोड़ी होती है, मसलन रात का वितर छोड़ा हुआ है आपने कि सुबह पढ़ेंगे, सुबह जब आप उठे आपने देखा आपको पीरियड शुरू हो गए, अब क्या किया जाएगा? या खुदा न खास्ता कोई फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो चुका था और आपने नहीं पढ़ी ये सोच के कि अभी नमाज का वक्त है, और आपने बाद में देखा तो पीरियड्स हो गए, आप कहते हैं छुट छुट गई नमाज। नहीं, अगर उस नमाज के वक्त के अंदर आपकी छुट्टी और आपने नहीं पढ़ी, जब आप गुसल करेंगे ना तो वो आखिरी छुट्टी भी नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह एक और चीज़ जो हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे उलमा बताते हैं, और वो क्या कि जब आप गुसल करते हैं तो उसके बाद जब नमाज पढ़ेंगे ना, तो जो दो नमाजें जमा हो सकती हैं ना, और वो कौन सी हैं? जोहर और असर और मगरिब और इशा। अगर आप असर के वक्त पे फारिग होके शावर ले रहे हैं तो आप एहतियात के तकाजे में जोहर की भी पढ़ें, क्योंकि इंसान को नहीं पता कि मैंने वाकई ठीक चेक किया है कि नहीं। कोई एक बिल्कुल डेडलाइन तो होती नहीं है ना, हल्का सोचते टाइम लगता है ना, तो फिर पिछली पढ़े। इसी तरह अगर कोई ईशा की नमाज पे फारिग हुआ और गुसल करना चाह रहा है तो फिर वो साथ मगरिब की भी नमाज पढ़ेगा। यानी एक एक नमाज का कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा, तो लिहाजा इसमें डिले नहीं करना। फिर एक और बात जो थोड़ी सी यानी फिर ज़ाती सी हो जाती है, लेकिन जो चीज़ ज़ाहिर है कि मतलब फ़ायदे की, उसको जिक्र करना चाहिए कि जो पीरियड्स का गुसल है या कोई दूसरा गुसल, उसका गैर ज़रूरी बालों की सफाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप अपनी आदत के मुताबिक उसी मौके पर करते हैं ताकि महीना के बाद महीने का हिसाब रहे, अच्छी आदत है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन बाज़ ख़वातीन को देखा है कि वो पाक भी हो गई, गुसल भी कर लिया, उसके बावजूद नमाज नहीं शुरू कर पा रही। क्या वजह? जी हमने सफाई नहीं की, हमने अपने बाल साफ नहीं किए, अभी ये असबाब नहीं हुए, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप नहीं कर सके आपको नमाज तो पढ़नी है। यानी ये चोर दरवाजे हैं जिससे शैतान हमारी नमाजों को चुरा लेता है। जी आप कोई सवाल है? ये सवाल करती हैं कि क्या इंसान अपने जिस्म के गैर जरूरी बालों को साफ करने के लिए ब्लेड या रेजर या कोई कैंची लगा सकता है? कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन मसनून अमल क्या है? सहाबियात का जो अमल था, नत्फ कहते हैं एक लफ्ज़ को, उखाड़ना, यानी बगलों के बाल जो होते हैं, अंडर आर्म्स जो है, उसको उखेड़ती थी। यानी आज के दौर में आप कह लें कि ग्लू या गम या वैक्स के साथ हाथों से उसको खींच देना, आसानी के लिए आप कह लें कि वैक्स करना। और इसी तरह जो अंडर लेग्स के बाल होते हैं उसको भी, वो कई तरीके होते हैं, कुदरती तरीके हैं, अल्लाह ताला ने देखिए हर चीज़ को पैदा किया है। दरख्तों में से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिसको गंदा ब्रोज़ा कहते थे कुछ लोग, तो उसको भी करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आज कोई अपने लिए जो भी तरीका करे, कोई क्रीम है, कोई ऐसी सेफ्टी रेजर है, कोई हरज नहीं है। अलग बात है कि नज़ाकत और सफाई का तकाजा यही है कि ऐसी चीज़ें ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद फिर ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ओवर कंट्रोल होती है और हर वक्त मतलब कंट्रोल में नहीं रहती। प्लस ये कि फिर उससे हर ही वक्त आपको करना पड़ता है। जो लोग बचपन से बच्चियों को ये चीज़ सिखाते हैं, मैं कहती हूँ ये माँ बाप माएँ बहुत बड़ा एहसान करती हैं। बस माएँ ऐसे मौके पे बच्चियों को ट्रेन नहीं करती और वो सहेलियों से सुन सुन के अजीबो गरीब हरकतें कर लेती हैं और बाद में फिर सारी उम्र रोती हैं कि हमने पहली दफ़ा क्यों किया। यकीन करें, अगर कोई औरत अपने जिस्म को इस तरह का कोई टूल ना लगाए, ना क्रीमिंग, आजकल आसान चीज़ें निकल आई हैं, आप स्प्रे करते हैं उसके थोड़ी देर बाल साफ हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए बाद में कितनी अजीबो गरीब किस्म की उससे यानी आपके ग्रोथ होती है। सबसे बेस्ट थिंग यह है कि आप शुरू से उनको नेचुरल चीज़ों पे रखें, कोई भी तरीका है, और आप एक दफ़ा आदत डाल देते हैं उसके बाद वो चीज़ फिर बाद में होती नहीं। जो बच्ची शुरू से ये तरीका यानी जैसे आपको बताया कि हाथ से करना, मैंने देखा बाद देहातों में लोग राख से करते हैं सफाई, यानी वो स्लिपरी सी होती है हाथ को लगा के उसको, जैसे अगर आप अपने हाथ से भी बाल तोड़ें तो आपको दर्द भी नहीं उससे होती। तो इससे क्या होता है कि चंद साल, 10-15 साल के बाद बाल तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप निकलेंगे भी बाल तो इतने सॉफ्ट निकलेंगे और वो फिर जान छूट जाती है। तो बहरहाल ये कि शरण इसमें कोई कबाहत नहीं है। हमारे यहाँ ये जो बात है कि औरत ऐसा करेगी तो उसका जनाजा भारी होगा, मैं खुद आपको बताती हूँ कि एक वक्त था कि ये तसव्वुर था कि लोग कहते थे इसकी ऐसी औरत की डेड बॉडी में चुपके से कैंची रख दो। ये कैसी, ये कौन सी शरीयत है? अल्लाह ताला हिदायत दे। लोग देखिए जहालत जो है ना, ये सबसे बड़ा अजाब है, कितनी ज़िंदगी मुश्किल है। मैंने जब कुरान को पढ़ा, जब हदीस को पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि ज़िंदगी के ऊपर से बोझ उतर के आपके कंधे हल्के हो गए। हमने ये इन्हीं सारे मामलात में देखे, शोहर बीवी का मामला, गुसल, कितनी अजीबो गरीब चीज़ें लोगों ने अपने कंधों पर रखी है। तो तरस आना चाहिए हमें लोगों की हालत पे कि लोग किस तरीके से यानी दीन के नाम पे मुश्किल में होते हैं। इन्होंने पूछा कि क्या बेस्ट एज होती है कि जिस पे इन बालों को रिमूव किया जाए? प्यूबर्टी, और जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं उतना ही बेहतर है ताकि ये चीज़ रहे। लेकिन बच्चियों को जहनी तौर पे शुरू से बताएं, कोई नई चीज़ एक तजुर्बे करने और ऐसी चीज़ें जो पढ़ के एड्स को देख के, कोई आपका जिस्म इतनी नाजुक चीज़ है कि आप इस पर कोई भी चीज़ एक दफ़ा एक्सपीरियंस करते हैं, बाद में वो फिर आपको हमेशा ही करना पड़ता है। तो ये शादी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये प्यूबर्टी से है, बल्कि 40 दिन की एक हद दी है कि, और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि अल्लाह ताला ने जो 10 खसाइल फितरत, इसको खसाइल फितरत कहते हैं, यानी इंसान की फितरत है कि वो पाक साफ रहे। जानवर जो है उनके अंदर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, और आज इंसान जब असफुल साफिलीन में होता है और सारे जिस्म से बाल साफ कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ कल्चर ऐसे हैं कि ऐसी जगहों से बाल साफ नहीं करते, मजहबन नहीं करते, तो ये फिर वही बात है कि फितरत से हटना है। और इस पे माओं को ट्रेन करना चाहिए और बच्चियों को इसमें कभी नहीं शर्माना चाहिए। दोस्तों से तो ये बातें करने की नहीं होती, इसमें भी एक बंदे की प्राइवेसी मैटर, हम किसी से ये नहीं पूछते कि मैं रेस्ट रूम में जाके कैसे इस्तंजा करूँ, तो ये मैटर्स कम अज़ कम फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के नहीं होते, इससे फिर और कबाहतें पैदा होती हैं। तो इस चीज़ से इवॉइड किया जाए, और जो भी नेचुरल तरीका इस्तेमाल करें वो सबसे ईजी होता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हमारे लिए इंफॉर्मेशन थी, और अल्लाह करे कि हम इन बातों को अपने अमल के लिए सीखें। इन बातों को पढ़ने का मकसद ही है कि अमल हो। बाज़ चीज़ें जब उम्र के एक ख़ास हिस्से के बाद पता चलती हैं तो इंसान को फिर तकलीफ़ महसूस होती है कि मैंने ये बात पहले क्यों ना जानी। तो अल्लाह करे कि शऊर की उम्र से पहले ही हम इन चीज़ों को लेने वाले बन जाएं।